चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे चोला माटी के हो चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे हाय चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे दोना जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी संगी कारण जैसे दानी बाली जैसे धीर चले गए रावण जस अभिमानी चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे कोनो रिहिस ना कोनो रहे भैया ही सबके पारी एक दिन आई सबके पारी
दक्षिण भारत में एक महान योगी कभी हुआ था जिसका नाम था विमन्ना योगी। कोई कहते हैं 15वीं शताब्दी, कोई कहते हैं 16वीं, कोई कहते हैं 17वीं, तिथि पता नहीं, परंतु महान योगी था, कवि था, महाकवि। आंध्रा में जो मंदिर है श्री सैलम में मल्लिकार्जुन कहा जाता है वो निमित्त था। उसके जीवन में बहुत ही हृदय स्पर्शी एक वृत्तांत है। वो और उसका भाई रमन्ना दोनों ही बचपन में अनाथ हो गए थे। बड़ा भाई जो था उसकी शादी हो गई और ये अभी छोटा था, पर जैसे जैसे बड़ा हो गया कुसंग में चला गया और वो कुसंग इतना बढ़ गया कि हर प्रकार का विकार, हर प्रकार के नशे की लत उसे लग गई और वो एक अत्यंत विकर्मी और कुकर्मी व्यक्ति बन गया विमन्ना। और धीरे धीरे एक वेश्य के पास वो जाने लगा और वो वेश्य उसे रोज धन मांगती रहती और जब धन उसे नहीं मिलता तो उसने फिर घर में चोरी चालू कर दी। उसका भाई और उसकी भाभी दोनों ये जानते थे कि ये कुसंग में है, उसे छुड़ाने की कोशिश भी की, परंतु भाई भाभी दोनों का बहुत अधिक प्रेम भी था उससे, तो वेमन्ना ने चोरी करना चालू की घर से जेवर, और जब भाभी को पता चला तो उसने सारे जेवर छिपा दिए। पर एक रात जब भाभी सोई हुई थी और वेमन्ना के पास अब उस वेश्या के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वेश्या निरंतर मांगती रहती थी, तो आधी रात को वो भाभी के कमरे में आता है और उसके गले में जो जेवर है वो निकालने की कोशिश करता है। वासना का भूत सवार था और भाभी जाग जाती है और उसको देखती है, ये उसके कमरे में आया हुआ है, उसको तो पहले कमरे से बाहर निकालती है और फिर उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे थे? तो वो कहता है कि मेरा जिससे प्यार है उस वेश्या से, उसने मांगा है। वो भाभी शायद बहुत ज्ञानी योगी आत्मा रही होगी, केवल एक योगी ही वो बात कह सकता है जो उस भाभी ने कहा। क्या कहा होगा? हम योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी में एक दूसरा शब्द है योगिनी, पर योगिनी शब्द का प्रयोग कम होता है, योगी ही मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। योगी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। वैसे स्त्री के लिए दूसरा शब्द है योगिनी, पर प्रयोग कम आता है उसका। क्या कहा होगा उस भाभी ने? किसी को पता है वेमन्ना महर्षि की, योगी की कहानी? वेमन्ना योगी, कोई कहते हैं 1820 में जन्म लिया था। वो एक ऐसी बात कह देती है कि वो जब जाके वो करता है, उसे परम वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा वैराग कि वो व्यक्ति जो विकारों में डूबा था, वो व्यक्ति जो देह के बिना रह नहीं सकता था, वो व्यक्ति जिसमें हर प्रकार की नशे की लत थी, वो व्यक्ति ऐसे वैराग को उत्पन्न होता है कि वो सब कुछ संसार छोड़कर चला जाता है, तपस्वी बन जाता है, प्रभु प्रेम में डूब जाता है। ऐसी घटना। वो कहती है कि तुम कहते हो कि उस वेश्या का तुमसे प्रेम है और तुम्हारा उस वेश्या से, और वो तुमसे ये मांग रही है, उससे जाके कहो कि वो निर्वस्त्र अवस्था में खड़ी रहे और ये जो जेवर है वो पैरों के नीचे से हाथ डाल के तुमसे पीछे से ले। तो वो जाके वैसा ही करता है। तो जैसे ही वो पीछे से हार देने लगती है, वो नेकलेस, उसके देह को वो देखता है और उसे तुरंत वैराग उत्पन्न हो जाता है। ये वास्तविकता है शरीर की, और फिर एक पल वहां नहीं टिकता। ये उसकी भाभी ने उसे कहा था कि ऐसा करो, और फिर वो वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। देह की वास्तविकता जैसे ही पता चलती है, वो जो देह के प्रति भ्रम है, वो जो देह के सौंदर्य का भ्रम है, जैसे ही टूटता है और व्यक्ति देख लेता है ये शरीर है क्या, वैराग्य आ जाता है। कवि लिख रहा है, चोला माटी के राम एकल का भरोसा। ये जो चोला है ये माटी का भरा हुआ है, भरोसा एक राम का है। चोला माटी के राम एकल का भरोसा। द्रोण जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी संगी, करण जैसे दानी वाली जैसे वीर चले गए, रावण जस अभिमानी। चोला माटी के राम एकल का भरोसा। एक राम का ही भरोसा है, इस देह का कोई भरोसा नहीं है। ये देह मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। डस्ट थाउ आर्ट एंड टू डस्ट थाउ रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल बट ऑफ द बॉडी। अंग्रेजी कवि H.W. Longfellow अपनी कविता में लिखता है कि मिट्टी तुम हो, मिट्टी में मिल जाओगे। ये शरीर के लिए लिखा गया है, आत्मा के लिए नहीं। डस्ट थाउ आर्ट, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। चोला माटी के राम एकल का भरोसा। चोला माटी के राम, कोनो रिस नहीं कोनो राह नहीं, भैया ही सबके पारिक, एक दिन आया सब पे बारिक, काल के नौला नौला छोड़ो छोड़े नहीं, राजा रंग भिखारी। भगवान उस पारिक उस इवैल्यूएटर की तरह आएगा कि जो सबका हिसाब लेगा एक दिन। राजा रंग भिखारी, कोई भी नहीं छूटेगा। भव के पार लगे कर हेते, हरि के नाम सुमिररे संगी, हरि के नाम सुमिररी। ये दुनिया माया के रे पगले, जीवन मुक्ति कर ले। चोला माटी के राम एकल का भरोसा। चोला माटी के राम, हाय चोला माटी के राम एकल का भरोसा। जो गायिका ने ये गीत गाया, अवधि भाषा है, अवधि सी मिलती हुई। जब वास्तव में उसके बेटे ने शरीर छोड़ा था, तब भी फिर उसने ये गीत गाया था कि ये देह मिट्टी है, चोला ये माटी के राम एकल का भरोसा। तो जब तक आत्मा देह में फंसी है, तब तक आत्मा अभिमानी स्थिति सोल कॉन्शियस स्टेज बन ही नहीं सकती। 18 तारीख की मुरली थी, विपरीत बुद्धि अर्थात नाम रूप में फंसते हैं। और नाम रूप क्या है? बास, बास है बास। नाम रूप की बास में फंसना, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। नाम रूप को बाबा ने क्या कहा? बास कहा। नाम कम फॉर्म ज्यादा रूप, नाम में तो कम फंसते हैं। नाम में फंसना और रूप में फंसने में क्या अंतर है? बाबा ने कहा ये बास है, ये विपरीत बुद्धि की निशानी है। आज कहा है गटर में गिरते हैं, बाप धर्मराज भी है, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर रोते हैं, फिर दिल खाती है उनकी, माया विकर्म कराती है, भ्रष्ट कर्म करते हैं। ये कलयुग है, ये छींची दुनिया, ये विकारी दुनिया, ये पतित दुनिया, ये रावण का राज्य है, कितने सारे नाम गिनाए, ये तमोप्रधान दुनिया, ये कलयुग की दुनिया है। आज की मुरली में फिर दिल खाती रहती है, माया गटर में गिरा देती है, नाम रूप में फंसते हैं। नाम कम रूप ज्यादा, नाम अर्थात नाम में फंसना अर्थात किसी का नाम बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत ख्याति है, नामचीन है कोई, उसमें लट्टू हो जाना, क्योंकि बड़े लोगों के पीछे पड़ने में फायदे बहुत है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए नाम के पीछे पड़ते हैं। या फिर नाम हो जाए ये कामना। नाम में फंसना में दो अर्थ है, एक तो हमारा नाम हो जाए, ख्याति लब्ध हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। योगी की सबसे बड़ी इच्छा कौन सी होती है? गुमनाम रहने की, गुमशुदा रहने की। पहले योगी सोचता है प्रसिद्ध हो जाऊं, पर बाद बाद में पता चलता है कि वह गुमनाम ही रहने में अच्छा है। विदेश का संत था वोल्टेयर, संत कहो या महान व्यक्ति, उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, और वो हो गया। पर जब वो प्रसिद्ध हो गया और सड़कों से चलता था, लोग ने चलना मुश्किल कर दिया उसका। विदेश में प्रथा है अगर कोई महान व्यक्ति का कपड़े का टुकड़ा भी मिल जाए तो पुण्य है, तो वो जाता था उसके कमीज फाड़ देते थे लोग। इसलिए फिर उसने सोचा ये कहां फंस गया, इससे तो गुमनाम ही अच्छा था, गुमशुदा ही अच्छा था, अननोन। इस संसार में योगी पुरुषार्थ करता है कौन सा? अननोन रहने का, एनोनिमस, कोई जाने ना। क्योंकि जानने की वो जो स्टेज है वो भी देख ली, और उसमें क्या मिला? दुख। क्योंकि आज तुम्हारी महिमा कर रहे हैं, कोई दूसरा आएगा तो उसके पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि ये जो लोग है मॉब, भीड़, मॉब मेंटेलिटी है, आज इसके पीछे तुम ही भगवान हो, कल इसको रिजेक्ट कर देंगे, नया आ जाएगा, कहेंगे तुम भगवान हो, तुम हमारे प्रेरणा स्थान हो। और जो पुराने हैं वो नहीं चाहिए, बहुत सुन लिया, अभी इसको छोड़ो। अंग्रेजी में कहते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक, नया कौन है? हाँ ये नया है, इसके पीछे भागो। तो नाम में फंसना अर्थात उसके पीछे जाना जिसका बहुत नाम है, या फिर नाम में फंसना अर्थात खुद को ख्याति नाम करने का प्रयत्न करना, और दोनों ही माया के रूप है, क्योंकि दोनों में ही चाह है, और जहां चाह है वहां दुख है, जहां चाह है वहां कलयुग है, जहां चाह समाप्त है वहां सतयुग है। ये नाम की बीमारी है, उससे भी कड़ी बीमारी दूसरी है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, और वो है रूप की बीमारी। अर्थात रूप की बीमारी को क्या कहेंगे? रूप की बीमारी अर्थात क्या? रूप में आकर्षण, शरीर में आकर्षण, शरीर को सुंदर मानना, ये भ्रांति, और शरीर के पीछे पागल होना, शरीर को देखना, शरीर के फोटो खींचते रहना, शरीर को देखते रहना, काला गोरा, ये जो माया है। सोचो कोई बहुत अच्छा वक्ता है और वो बहुत सुंदर है, लोग उसके पीछे है, इसलिए नहीं कि वो सुंदर है, परंतु व्यक्तित्व बहुत सुंदर है और वाणी बहुत सुंदर है, परंतु वही वाणी यदि किसी कुरूप व्यक्ति से निकले और उसका भी व्यक्तित्व सुंदर है, तो क्या लोग यहां भी आकर्षित होंगे? नहीं। जो योगी होंगे, जो आध्यात्मिक होंगे, रियल, केवल वही होंगे। यहां जो मॉब है वो तो देह को देख रही है, 50% आकर्षण तो देह का है, 50% वाणी का, 50% पवित्रता का, 50% चरित्र का। अगर वही वाणी वही चरित्र किसी कुरूप व्यक्ति में है तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि रूप की बीमारी इतनी गहरी बैठी हुई है, घुसी हुई है कि हर व्यक्ति उसी में डूबा हुआ है। सबसे पहला पुरुषार्थ तो है कि स्वयं को स्वयं की ही देह से उपराम कर देना। हमारा सबसे ज्यादा मोह अपने ही देह में है, अपने देह को तपाना है। अगर हमारा अपनी देह में कोई मोह नहीं तो किसी और का हमारी देह में मोह नहीं होगा। अगर हमारा अपनी देह में कोई आकर्षण नहीं तो किसी और का हमारी देह में भी आकर्षण नहीं होगा। यदि किसी और का हमारी देह में आकर्षण हो रहा है तो जरूर वो हमारी ही अपनी देह के आकर्षण का परिणाम प्रतिध्वनि है, रेपरकशन, एको हो रहा है वहां पर, सूक्ष्म एको। बाबा ने इसको कहा बास, और बास के बहुत सारे प्रकार है दुर्गंध के। 7 प्रकार की दुर्गंध हम देखेंगे और 5 विधियां जिससे इस दुर्गंध से छूटा जाए। दुर्गंध के प्रकार बहुत सारे हैं, 15 टाइप्स ऑफ ऑर्डर, पर हम उसमें से कुछ दुर्गंध देखेंगे। और ये जो शरीर है, और ये जो, कोई कहेंगे सुबह सुबह ये कैसी बातें कर दी, अच्छी अच्छी बातें बोलो जरा, फूल वाली, प्रेम वाली, भावना वाली, ये सुबह सुबह वैराग्य की बातें। बस सुबह ही वैराग्य की बातें करनी चाहिए, क्योंकि सुबह जो चिंतन किया जाता है वो गहरे घुस जाता है, क्योंकि वासना छिपी हुई है, दबी हुई है। क्यों 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आज की मुरली में है, खुद पवित्र बनते हैं, दूसरों को पवित्र बनाते हैं, दूसरे जो गिरे हुए उनको उठाते हैं और फिर खुद गिरते हैं। क्यों? क्या उन्हें पवित्रता का महत्व पता नहीं? क्या उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की थी? क्यों? क्या था ऐसा? क्या वो मधुबन में नहीं रहे थे? मधुबन में भी रहे थे। क्या बाबा से नहीं मिले थे? बाबा से भी मिले थे। क्या दादियों को नहीं देखा था? दादी के निष्कलंक चरित्रों को उन्होंने देखा था। बाबा से अनुभव नहीं किया था? बाबा से हाथ से टोली ली थी, बाबा से स्टेज पर दृष्टि ली थी। पर ऐसी कौन सी माया आ गई कि आत्मा शरीर में फंस गई और घसीटते हुए वो माया यहां से बाहर ले गई, भगवान के राज्य से? तो इसको साधारण तो नहीं समझा जाएगा ना। ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि हम तो बहुत पवित्र है, हमें तो कोई माया आती नहीं, ऐसे कैसे नहीं आती, जन्म जन्म के विकारी संस्कार है। पहले तो ये स्वीकार कर लो कि हमें भी माया आती है, पहले तो ये स्वीकार कर लो कि हमें भी अभी तक वो संपूर्ण पवित्रता की कोई झलक ही प्राप्त नहीं हुई है। वासना दबी रहती है किसी अंधेरे कोने में मन के। अगर उस तक पहुंचना है तो कड़े शब्दों का प्रयोग चाहिए, और उस तक पहुंचना है तो टॉर्च लेकर घुसना पड़ेगा अंदर, वैराग्य की। और जो कहा सबसे ज्यादा मोह, लगाव, आसक्ति, लागत आत्मा की शरीर से है, तो सारा पुरुषार्थ वैराग्य का है। सारा पुरुषार्थ इस शरीर से डिटैच होने का है। सारा पुरुषार्थ इस शरीर के प्रति जो इतना मोह है, जो पागलपन है, दीवाने हैं, उस दीवानगी से मुक्त होने का है। नहीं तो कुछ ना कुछ हल्के फुल्के भाव प्रकट होते ही रहेंगे। इससे दोस्ती कर लूं, ये दिखने में हैंडसम है, ये दिखने में सुंदर है, इसकी मदद करो, उसको मदद करो, इसको भाई बनाओ, उसको बहन बनाओ। अब ब्राह्मण डायरेक्ट थोड़ी ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाएंगे, कुछ तो चाहिए दूसरा आधार, तो सेवा की लेबल तो चिपकाने पड़ेंगे ऊपर से, कुछ ज्ञान युक्त तो बातें तो करनी पड़ेगी, कुछ शेयरिंग तो होनी चाहिए ज्ञान वाली, जो ऊपर ऊपर से होगी, जो कि ढोंग और दिखावा होगी, परंतु अंदर से वासना धधक रही है। उसी से दोस्ती क्यों करनी है? दूसरे भी तो है। अब हिसाब किताब ये भी एक दूसरा बहाना है। क्योंकि ब्राह्मण कुछ भी करेंगे तो अच्छे ज्ञान युक्त शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो सुरक्षा हो जाती है। हमारा उसके साथ हिसाब किताब, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। अपने विकारों को सेवा के शब्द से, हिसाब किताब के शब्द से, ड्रामा के शब्द से, दोस्ती के शब्द से, पवित्र प्रेम के शब्द से छिपाना नहीं है। ये सारे शब्द है, प्यूरिटी, पवित्र प्रेम, सेवा का संबंध, सेवा के साथ ही तोड़ निभाना है। कितने शब्द हमने निर्माण किए हैं। भगवान को भी सुना दे अगर वो हमको कुछ कहे तो, और वो भी चुप हो जाए क्योंकि इन शब्दों के सामने वो भी क्या बोलेगा। इतने पावरफुल शब्द हमारे पास है क्योंकि सिखाया उसी से, उसी से सीखे हम, उसी मेरी बिल्ली मुझसे में आओ। सबसे पहला नाम रूप में फंसना अर्थात दुर्गंध, और दुर्गंध का एक प्रकार है नीचे से चालू करते हैं गैंग्रीन। पैर जब सड़ जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में, मधुमेह के रोगी में पैर जब सड़ जाता है गैंग्रीन कहा जाता है, कैसी दुर्गंध आती है वहां से। जिसने नहीं सूंघी है वो कभी सूंघ कर देखना। डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, पैरों में चोट लगी हुई, तीन तीन महीना हो गया, दो दो महीना हो गया, ड्रेसिंग चालू है, और जैसे ही ड्रेसिंग खोलो नासा पुटो में अंदर घुस जाती है यहां दिमाग तक, इतनी दुर्गंध। क्या उस दुर्गंध वाली ड्रेसिंग को कोई मूर लगा के बैठेगा। ये नाम रूप भी वैसा ही है, पर इस देह को तो पकड़े हुए है, चाटते रहते हैं इस देह को। है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, गैंग्रीन है। क्या ऐसा वैराग हमारे लिए, हमारे मन में इस देह के प्रति है। क्या है, क्यों मन इतना पागल है इसके पीछे। क्यों युवक बैठे रहते इंटरनेट पर, क्यों रात रात भर जागते रहते, क्यों फिल्मों में जाते रहते, क्यों इतना आकर्षण है फिल्मों का। क्या कुछ सीखने जाते हैं फिल्मों से। अगर कोई फिल्म देखने जाते हैं तो क्या लक्ष्य से जाते हैं, सीखने के लिए। आज मॉरल क्या है, कितना उस हीरो ने त्याग किया, मुझे भी त्याग करना चाहिए, ऐसा कोई सीख के आता है। लक्ष्य तो है ही विकार। दुर्गंध है, जो दुर्गंध गैंग्रीन में है। बाबा ने कहा यह नाम रूप की बास है, विपरीत बुद्धि अर्थात नाम रूप में अटकते हैं उसकी बास आती है बाप को। बाबा कहेंगे हटाओ इसको यहां से। अगर बाबा के सामने हमें पेश किया जाए और हमारा कोई ऐसा एक संबंध है जिसमें नाम रूप की बीमारी में हम फंसे हुए हैं, वो नाम रूप की बीमारी कोई और रूप भी हो सकती है। मां का बच्चे में अत्यंत मोह, वो भी बास है। पति का पत्नी में, पत्नी का पति में अत्यंत मोह, वो भी बास है। जहां मोह है वो दुर्गंध है। हमें तो अपने आप को सभी मोह से मुक्त करना है। लास्ट चैप्टर ही क्या है, नष्ट मोह, मोहजीत राजा की कहानी। तुम देह के मालिक हो, दिन रात देह के पीछे लगे हुए, देह को खिलाने में लगे हुए। आज की मुरली में खुशी ही खुराक है, अर्थात हैप्पीनेस इज फूड। इससे अपना पोषण करो शरीर का, उस भोजन से नहीं। खुशी खुराक है, पैदल चले जाओ थकोगे नहीं। क्यों, क्योंकि खुशी खुराक है। क्या भोजन को हमने, खुशी को अपना भोजन बनाया है। नहीं, हमारा भोजन कुछ और है, खुशी नहीं है। खुशी नहीं है इसलिए तो उसमें जा रहे हैं, उसमें खुशी मिल रही है क्योंकि वो तो अधीनता है। वास्तविक खुशी, योगी का भोजन खुशी है, योगी का भोजन संकल्प है, योगी का भोजन ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य की। जो उसके अंदर ऊर्जा है उस ऊर्जा से ही उसके शरीर का पोषण होता है, उसे किसी और भोजन की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो खुशी खुराक है, इस बात का हमने कितना चिंतन किया है। बाबा ने कभी कहा है वो दूसरी कोई खुराक है? हमेशा क्या कहा है, खुशी को खुराक। पर हमने माना है क्या? नहीं, पहले मानो नहीं माना, आज नहीं माना, आज खुशी खाओ शाम 6 बजे तक, देखो फिर चलो नाश्ते में आज खुशी खाना, देखो आज क्या होता है। वास्तव में खुशी भोजन है ना, तो आज नाश्ते में खुशी खाना, थाली लो एक और सोचो उसमें खुशी रखिए और खाओ इनविजिबल खुशी, और फिर देखना पेट भरा कि नहीं भरा। जिसका भर गया मतलब वो योगी, और जिसका नहीं भरा मतलब वो अयोगी। ऐसा क्या कर लिया रात भर पेट ने जो सुबह सुबह इतना नाश्ते की आवश्यकता है? पाश्चात्य लेखकों ने इसके ऊपर बहुत लिखा हुआ है कि पेट रात भर सोया था, आराम था, और उसको उठते ही थाली भर कर नाश्ता दिया जा रहा है। 3:30 बजे ब्रेड क्या कहे उसको। जगदीश भाई जी से किसी ने पूछा था, भाई साहब ये क्या है, यहां पर इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या खाए हम, ये तो योगियों का भोजन है। भाई साहब ने कहा तुमको किसने खाने के लिए बोला? तो वो खाओ जो तुमको खाना है, बाकी छोड़ो, वो तुम्हारे लिए थोड़ी है, वो मेहमानों के लिए, तुम तपस्वी हो। पहला गैंग्रीन, दूसरा रॉटन फूड, सड़ा हुआ भोजन। एक भोजन को डिब्बे में रख दो, आज 3 दिन डिब्बा बंद रखो और खोलो, फिर क्या होता है? किसने करके देखा है ऐसा, करके या हुआ है ऐसा जीवन में? भोजन जो कुमार है उनके साथ तो होता ही है, याद ही नहीं रहता है किसी डिब्बे में भोजन है और उसमें ही रह गया, और 3 दिन के बाद खोला उसमें फंगस। जूस रख दो एक 5-6 दिन बोतल बंद, और फिर खोलो कैसा फवारा निकलता है। उसमें जो दुर्गंध है वही देह में दुर्गंध है, फिर भी इस देह से इतना प्यार, इतना पागलपन देह के पीछे, देह को देखने की इच्छा है। क्या है देह में? कुछ भी नहीं है। उसके बाद में अगला एक्सपल्शन ऑफ गैसेस, मीथेन गैस, लंबी गैसेस की लिस्ट है। वो गैस अगर हवा में आ जाए तो दुर्गंध, पागल हो जाते हैं। जो सबसे खराब गैसेस है संसार में, एक्सपल्शन ऑफ मीथेन, ये सारी गैसेस, इसमें जो दुर्गंध है वही दुर्गंध इस शरीर में। उसके बाद में डेड एनिमल, मरा हुआ जानवर, रख के देखो। कुत्ते से बहुत प्यार है ना, कई लोग कुत्ता पालते, मरने के बाद उसे 15 दिन घर में ही रखना, फिर देखो क्या होता है, क्या होगा। मरे हुए जानवर सड़क पर गिरे रहते हैं ना, क्या होता है वहां, कैसी दुर्गंध आती है, कोई जाता है उसके पास? पर शरीर के लिए तो क्या क्या करते हैं, अपने शरीर के लिए नहीं, दूसरे के शरीर की प्राप्ति के लिए। दूसरा मुझे मिल जाए, ये मेरा है, ये मेरी है, इसका शरीर मुझे चाहिए। इसके पहले भी कहा था, एक बार एक युगल यहां आए थे या यहीं थे, फिर चले गए कहीं, और अभी अभी शादी हुई, 15 दिन हुए, और वो जो उसकी युगल थी पत्नी अचानक से मर गई, और वो पति इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, 20-25 वर्ष की उम्र होगी, हॉस्पिटल के सीढ़ियां जो है सामने ना, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, 9 बजे से 12 बजे तक बैठ के रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, मेरी पत्नी, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा। इतना था प्रेम, प्रेम की गंगा बह रही थी जैसे। और 2 मास के बाद आ गया, कार्ड लेके, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना। प्यार किससे था? क्या उस आत्मा से था? अगर आत्मा से होता वास्तविक लैला मजनू वाला, तो उसकी याद में सारी उम्र को कवारा रहता। पर शरीर से प्यार था, अब शरीर है ही नहीं, तो शरीर दूसरा चाहिए। डेड एनिमल, उसके बाद में कॉर्प्स, कॉर्प्स अर्थात मुर्दा, लाश मनुष्य की। मुरलियों में कई बार आते हैं, लाश को क्या करते हैं? जला देते हैं, रखते हैं क्या घर पर? और लाश को क्या कहते हैं? डेड बॉडी, बॉडी को यहां से उधर हटाओ, उसका नाम नहीं लेते, क्या कहते हैं? बॉडी, बॉडी को अब उधर, इसकी बॉडी को उधर ले लो, बॉडी बॉडी कहते हैं ना सर, क्या नाम लेते हैं? भाई कहते हैं क्या उसके आगे पीछे, या बहन? कभी नहीं। इसलिए रात को सोते समय क्या सोचना, ये लोग खड़े हैं इधर जलाने के लिए, मैं इधर मृत्यु शैया में हूं। मृत्यु शैया में जल जाएगा सब। और ये भी सुन लो, लोग क्या सोच रहे कह रहे, मन ही मन क्या चल रहा है उनके। एक सोच रहा है इतना लेट हो रहा है, इतनी धूप हो रही है, कब जाएंगे, भूख लग रही है। मन में क्या क्या चल रहा है हर एक के मन में कुछ कुछ चल रहा है। कोई कारोबार का सोच रहा है, कोई ऐसा, तो सोचने वाला बहुत ही कम होगा कि ये कितनी पुण्य आत्मा थी, कुछ कुछ ही सोच रहे। कॉर्प्स, उसके बाद में बॉडी ओडर, शरीर से निकलने वाली दुर्गंध। कोई 10 दिन नहाए नहीं, हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, एक एक दो दो महीने से जिसने नहाया ही नहीं है, ये ग्रासी और ये सब लोग उठा के लेके आते, उनकी यहीं धुलाई होती है फिर ट्रीटमेंट के दौरान। कई सारे साधु आ जाते हैं एक एक महीने से जिन्होंने नहाया नहीं है। एक साधु आए थे, ऐसे ही बैठे थे 2 महीने से तपस्या में, वो उसके पैर सीधा करने में 2-3 महीना फिजियोथेरेपी लगा ऐसे हो गया था। ऐसे हो गया था, वो नीचे लगता है काबू रोड में जाते समय मंदिर है ना, तो शरीर से दुर्गंध आती है, पसीना। और उसके बाद में एक्सक्रीटा, विष्ठा, पशुओं का और मनुष्य का, उसमें जो कीड़ा नहीं, उसमें जो स्टूल में जो दुर्गंध, बस वही दुर्गंध नाम रूप की है। सवेरे सवेरे ही मूड ऑफ होना चाहिए, सवेरे सवेरे ही वैराग का चिंतन होना चाहिए, ताकि, क्योंकि दिन भर में तो जो वैराग का चिंतन चलता है वो सबकॉन्शियस में थोड़ी जाता है। सबकॉन्शियस में जाने का समय है सुबह, सुबह सुबह मन को बताओ, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। सुबह सुबह धधकते हुए शब्द चाहिए वैराग्य, ताकि मन विरक्त हो जाए, और मन के लिए बस अब यह शरीर का संसार जो है उससे हटके केवल आत्मा का संसार रह जाए। और जब आत्मा का संसार रहेगा, आत्मा केवल आत्मा के ही विषय में सोचेगी, और दूसरा कुछ सोचेगी ही नहीं, आत्मा की ही सारी बातें याद आती रहेगी और कुछ याद नहीं आएगा। तो ये 7 दुर्गंध है, और बहुत सारे हो सकते हैं। जिसको अधिक चिंतन करना है दुर्गंध का, वो और करे। स्टैग्नेटेड वाटर, एक जगह पानी जो संचित हो जाता है, दुर्गंध आता है उसमें। कंपोस्ट, दुर्गंध आता है। सीवर वाटर, दुर्गंध आता है। बहुत सारे हैं दुर्गंध। वहां जाके खड़े रहो, देखो, और फिर ये सोचो ये शरीर में भी वही दुर्गंध है। अब दुर्गंध को मिटाने की 5वीं दिया, सबसे पहले बैनिश, फेंक दो उसको, जिस चीज से दुर्गंध आ रही है, जो भोजन जिससे दुर्गंध आ रहा है उसको डिस्पोज कर दो, फेंक दो उसको। वो जो संबंध है जिसमें दुर्गंध आ गई है, उस संबंध को उखाड़ कर फेंक दो, उस संबंध को विच्छिन्न कर दो, कट कर दो, वैराग की तलवार से, वैराग की कैंची से धागे जो बांधे हैं ना, इसको कटो इसे अमृत वेला बैठकर। बैनिश, थ्रो, उसके बाद में बर्न। अभी शरीर को कब तक रखोगे? मुर्दे को शरीर घर में रखा जाता है क्या? जला दिया जाता है। देखना अमृत वेला, विजुअलाइज करना कि ये जो संबंध है, कोई भी संबंध हो सकता है, बेटे का, मां का, बहन का, भाई का, पति पत्नी का, वीके नॉन वीके से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी संबंध जिसमें मोह की दुर्गंध है, मोह की सड़ांध है, उसको क्या कर देना है? जला देना है। कैसे जलाएंगे? कैसे जलाएंगे? सबसे ऊंचा टॉप का स्थान कौन सा है सृष्टि में? परम धाम में पहुंच जाना। वो यहां है, मैं यहां हूं, उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है, और मुझ जो भी चीज को हम देखते हैं, जैसे उस बिंदु को देखते रहो, इसको कहते हैं इमिटेशन थियरी। जो भी चीज को कंटिन्यूअस देखा जाए, उसके जैसे गुण हम में आने लगते। सूर्य को कंटिन्यूअस देखेंगे, वो ज्ञान सूर्य है शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे एक दिया है, कैंडल है, उसको देखते रहो त्राटक, उसके सारे गुण हम में आने लगेंगे। हमें फिर लगने लगेगा मैं ही सूर्य हूं, उसका प्रकाश मुझ में है, और उस प्रकाश से इसको बर्न कर देना है। तीसरा है बेरी, अर्थात गाड़ देना, जमीन में गाड़ देना। क्या कर देना? जमीन में गाड़ देना ऐसे दुर्गंध वाले संबंध को। या तो जला दो, या तो दफना दो उसको, दफन कर दो। कि दफन करने के बाद मिट्टी अच्छे से डाल देना, कोई निशान नहीं छोड़ना वहां पर, नहीं तो निशान रखोगे तो फिर याद आएगा, फिर आओगे, फिर खोदोगे। अभी उसका नंबर है, उससे रूठना रूसना हो गया, नंबर डिलीट, और जब दोस्ती होगी नंबर फिर ढूंढेंगे, फिर यहां वहां से निकालेंगे, फिर नई दोस्ती, फिर नया मोह, फिर नया संबंध, और फिर नए विकार। डिलीट परमानेंटली। तो तीसरा है, तीसरा बेरी अर्थात दफन कर दो। चौथा बॉब, बॉब कट होती है ना, बॉब अर्थात कट, कट कर दो, कट कर देना। नो कॉन्टैक्ट्स, जीरो डिजिटल कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं जीरो डिजिटल कम्युनिकेशन। सॉरी नहीं, थैंक यू नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, बस खत्म, अनजाने हो जाओ। कुछ भी करने गए तो उसमें फिर आ जाएगा मिसिंग यू, लव यू, थिंकिंग ऑफ यू, फिर तुम्हारा फोन नहीं आया, फिर क्या हो, फिर आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, क्योंकि चालू तो यहां से ही करेंगे ना सेवा कैसी चालू है, क्योंकि चालू तो वहीं से करनी है, उधर सेंटर पे क्या चालू है, सब ठीक तो है ना, प्रोग्राम होने वाला था, दादी जी आए कि नहीं, ये सारी ऊपर की बात है, ये सब ऊपर ऊपर है, अंदर कुछ वहां वायरस का क्या चल रहा है, उधर क्या कोई केसेस है क्या, संसार की मतलब संभल संभल के फूक फूक के कदम ऊपर ऊपर का, और फिर गहरी बातों में धीरे धीरे भूमिका। काट देना, काट देना अर्थात नो कॉन्टैक्ट्स, जीरो डिजिटल कम्युनिकेशन। उसके बाद में पांचवा, वो आप बताएंगे क्या होगा, बी से बताओ। ये तो अभी तक का सब नेगेटिव चिंतन था, अभी एक लास्ट पॉजिटिव चिंतन दे रहे ये एक लास्ट पॉजिटिव वाला है। एक पॉजिटिव चिंतन है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चिंतन है अब तक का, हाँ, बी पॉजिटिव इंग्लिश में एक शब्द है बाम, इसके दो अर्थ है, एक तो वो बाम जो आप जानते हैं, इसका दूसरा अर्थ है सुगंध, सेंट, सुगंध लानी है जहां दुर्गंध है, कौन सी? प्यूरिटी की, याद की सुगंध, प्यूरिटी की सुगंध, वैराग की सुगंध। वैराग में कितनी सुगंध है, वैराग शब्द एक बार बोल के देखो, मन में एकदम पानी आ जाता है मुंह से, बोल के देखो अभी अभी, वैराग, वैराग, वैराग रस है। वैराग शब्द बोलते ही मन गदगद हो जाता है, वैराग एकदम, संसार एक तरफ, राग एक में, केवल उसमें एक को ही याद करो बस, और कुछ नहीं। तो सुगंध लानी है, प्यूरिटी की सुगंध लानी है, वैराग की सुगंध लानी है, त्याग की सुगंध लानी है, याद की सुगंध लानी है, ज्ञान की सुगंध लानी है, धारणाओं की सुगंध लानी है, मर्यादाओं की सुगंध लानी है, मौन की। आज का वरदान स्लोगन है, जैसे 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 आवाज में आना सहज है, आवाज से निकल जाना भी सहज है, हो जाए। सुगंध लानी है शांति की, तुम शांति दूत हो, चुम शांति के पैगंबर हो, तुम मैसेंजर हो, कल कहा था मैसेंजर पैगंबर तुम हो, वो धर्म स्थापक नहीं है, तुम धर्म की स्थापना करते हो, ज्वालामुखी तुम, ज्वालामुखी हो। तो प्यूरिटी को बढ़ाना है, वैराग को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, तपस्या को बढ़ाना है, त्याग को बढ़ाना है, ज्ञान को, धारणाओं को बढ़ाना है, मर्यादाओं को बढ़ाना है, चिंतन इन चीजों का करना है, एकांत को बढ़ाना है, मौन का बढ़ाना है, अंतर्मुक्ता को बढ़ाना है। तब कहीं जाके ये जो दुर्गंध है, इससे उधर से दुर्गंध आ रही है तो उधर से जाएंगे ही नहीं, वैराग आ जाएगा दुर्गंध से। तो नाम रूप में फंसने की, दुर्गंध से क्या होना है, मुक्त होना है। कवि लिखता है, चोला माटी के राम एकल का भरोसा, चोला माटी के राम, द्रोणा जैसा गुरु चले गए, करण जैसा दानी, संगी करण जैसा दानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण अजस अभिमानी। हम भी चले जाएंगे, ये शरीर को तो जाना ही है, और किसका किसका शरीर पकड़ के रखोगे, जिसके शरीर को पकड़े हुए वही शरीर जाएगा। इसीलिए बेहद के वैरागी भाव, बी अर्थात बेहद का वैराग भी हो सकता है। तो जो जो जहां जहां पूरे विश्व भर में नाम रूप की बास में अभी भी फंसे हैं, आज की तारीख में, आज 20 तारीख है, आज वैसे बाबा आज आने वाले थे, पहले आ गए, अति 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 प्यार है तो पहले ही आ गए, इमरजेंसी लैंडिंग कर दिया बाबा ने। ओम शांति।
चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, चोला माटी के हो, चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के रे, सबके पारी।